ठीक है। और कुछ लोग अपनी इस वाले पोर्शन को भी साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल एक्टिव रखें ये दो। तैयार है सब? पक्का तैयार है? तो ये जयपुर धाम जो है, जयपुर स्थान जो है, इसका एक नाम है गुप्त वृंदावन। और आपने काफी सारी चर्चाएं निश्चित रूप से सुन ली होंगी। गिरिराज प्रभु हैं यहाँ पे, हमारे दिव्य मोहित प्रभु हैं, बड़ी दिव्यता बरसाई होगी दोनों भक्तों ने मिलकर। हाँ सही बोले। तो ये गुप्त वृंदावन है, क्यों है इसका नाम गुप्त वृंदावन? क्यों है इसका नाम गुप्त वृंदावन? यस माता जी। हाँ क्योंकि यहाँ गोविंद देव जी हैं, जो हाँ बच्चे बोला हाँ बोलो 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 सही बोल रहे। हाँ जब आगरा से औरंगजेब ने अटैक किया था तब वृंदावन के सारे विग्रह यहाँ पे छुपा दिए। तो भगवान की इच्छा दीवा छोटे बच्चों को बताना है। तो डीटेल्स यहाँ पर आ गए और एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जिससे भी बात करोगे, जैसे माता जी ने बोला किसी विग्रह की बात नहीं करी क्योंकि गोविंद देव जी यहाँ पर। हमारा एक्सपीरियंस है, अगर आप एंटर कर जाओ जयपुर में, किसी से पूछो राधा गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, वो आपको एक डायरेक्शन बताएंगे और आप उसको फॉलो करते हुए पहुंचोगे राधा गोविंद देव जी के मंदिर। आप किसी से पूछोगे राधा दामोदर जी का मंदिर क्या है, लोग आपको डायरेक्शन बताएंगे, उसको फॉलो करोगे और फॉलो करते हुए कहाँ पहुंचोगे राधा गोविंद जी के मंदिर। तो यहाँ पे जो है ना पूरी लाइफ चलती है राधा गोविंद जी के आसपास। श्री श्री राधा गोविंद देव की। अच्छा आप ये बताइए गोविंद देव जी का नाम गोविंद देव कैसे पड़ा? ये श्री रूप गोस्वामी के विग्रह है, बताएं हम। तो पहले तो आप में से कितने लोगों ने उनके दर्शन किए गोविंद देव जी? अब आप सबकी लाइफ खराब है, जो उनके दर्शन करता है उसकी लाइफ खराब हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं स्थान पे कि अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ नाता बना के रखना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं उनके साथ अच्छा बना रहे रिलेशन, सब चाहते हैं, तो रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हो, घर परिवार ठीक से चलता रहे ऐसा अगर आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बोलते हैं तो एक काम मत करो, वृंदावन मत जाना। और अगर गलती से चले गए वृंदावन, गलती से अगर चले गए तो यमुना जी पे मत जाना, अगर यमुना जी पे भी गलती से चले गए तो केशी घाट पे मत जाना। और केशी घाट पे अगर गलती से चले गए ध्यान रखना वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका रंग है काला, उसका नाम है गोविंद देव। क्या नाम है? गोविंद देव। उनकी तरफ मत देखो, जहां आपने गोविंद देव जी की तरफ देखा आपको अपने रिश्तेदार अच्छे नहीं लगेंगे। अब जब अच्छे नहीं लगेंगे तो मेरा संबंध कैसे रखोगे बढ़िया? अब सावधान, अब सबने देख लिया गोविंद देव जी को, वही केशी घाट वाले गोविंद देव जी इस समय जयपुर में आगे बैठे। अब आप कह नहीं सकते नहीं नहीं अब तो हमें इसको रिवर्ट करना पड़ेगा, कोई रिवर्ट पॉलिसी नहीं। अब आप सबकी लाइफ किसके कंट्रोल में आ चुकी है? गोविंद देव जी। अब आप गोविंद देव जी के बच्चे। अब हम सुनेंगे कथा कि गोविंद देव जी का नाम, कृष्ण का नाम गोविंद देव कैसे पड़ा, ठीक है। और इस कथा में, और इस कथा से पहले हमारे पास मैसेज आ गया कि हमारे को जल्दी खत्म करना है। आप पूरा डिटेल में मत बताना गोविंद देव जी का नाम कैसे पड़ा, तो इसलिए यह कथा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि 15 मिनट में हम ये कथा नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, आप जल्दी क्यों खत्म करना चाहते हैं? हाँ अथॉरिटी ने बोला, पर पॉइंट है कि और तो कोई है नहीं यहाँ पे, सारे गुड़गांव के लोग बैठे हैं और इनको भूखा रखना हमारे पास अधिकार है पूरा। तो अथॉरिटी से पूछ के आओ, क्या भक्त भक्त लोग भूखे रहने को तैयार है, दो ना और फिर दूसरा मैसेज लेके आओ। ठीक है, हरे कृष्ण। जो भक्तों को भूख लगेगी उनके लिए प्रसाद तैयार है, 5 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। और जो लोग जानना चाहते हैं गोविंद देव जी का नाम गोविंद देव कैसे पड़ा हुआ है, और जो कहे हमें क्या लेना देना, ये जा सकते हैं। तो ये गोविंद देव जी की कथा है, कैसे पड़ा आप सुनिए। आप सबने ये कथा सुनी है, पर इसको हम दोबारा से सुनेंगे और समझेंगे और हम रिलिश करेंगे। भगवान की जो कथाएं हैं, हर किसी भी चीज का पुनरावर्तन करने से वो फीका पड़ जाता है ना, फीका पड़ जाता है। अब बार बार एक ही बात बोलते रहो, प्रभु जी आपको पता है मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, अच्छा खिलाएंगे प्रभु जी आप। फिर आप 5 मिनट बाद बोले प्रभु जी मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, अच्छा प्रभु जी फिर आगे खिलाएंगे। अब यही बात थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, प्रभु जी आपको पता मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो अब जो सुनने वाला उसके साथ क्या होगा, वो कहेगा भाई साहब मैं ना रसगुल्ले की शक्ल नहीं देखना चाहता। परंतु कृष्ण कथा ऐसी है, अब जितनी बार एक ही कथा को सुनते रहोगे उतनी बार आनंद बढ़ता रहेगा। इसलिए इसके लिए लिखा हुआ है आनंदाम बुद्धि वर्धन, आनंद के सागर का वर्धन करने वाला। और दूसरा इसका मतलब हमने निकाला है आनंद और बुद्धि का वर्धन करने वाला, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अभी अभी 7 साल के हुए थे, कितने साल के, 7 वर्ष, उनको लगा मैं बड़ा हो गया। उससे पहले वो सोचते थे मैं बच्चा हूं, जिस दिन वो 7 साल के हो गए तो उनको लगने लगा तो मैं बड़ा हो गया। श्री कृष्ण है, वो लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे बच्चे सोचते हैं ना, वैसे वो सोचने लगे अब मैं बड़ा हो गया, पहले तो मैं छोटा था, अब मैं जो है ना सारी गड़बड़े ठीक करूंगा, जितने भी गड़बड़ चल रही है ये नंद महाराज के घर में वो सब मुझे ठीक करनी है, क्योंकि अब मैं क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो दिन आया दीपावली का, और उससे एक दिन पहले से देखा कि बड़ी तैयारियां हो रही हैं वृंदावन में, जगह जगह पे तैयारियां हो रही हैं। उन तैयारियों को देख के पूछा उन्होंने नंद महाराज से जाके, नंद महाराज जी बाबा बाबा आप ये क्या कर रहे हो, पिताजी इतने सारे क्या यज्ञ की तैयारी, ब्राह्मणों को बुला रहे हो, अन्न मंगवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। नंद महाराज बोले देख बेटा तू अभी बच्चा है, तू अभी खेल, बहुत सारे काम नहीं करता। बोले पिताजी 7 साल तो हो गए, 4 महीने पहले आपने मेरा बर्थडे मनाया था, अब 7 साल का हो गया, पहले तो मैं 6 साल का था, अब मैं बड़ा हो गया। आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, जो घर के बड़े लोग होते हैं उनको सब बताना होता है। नंद महाराज बोले बेटा खेल ले, बोले नहीं आप जो है मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं बड़ा हो गया और आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। तो नंद महाराज ने बताया कि देखो भैया इंद्रदेव यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पे उसी की तैयारियां हो रही हैं, दीपावली के एक दिन, दीपावली के अगले दिन जो है प्रतिपदा जो है ना हम जो है इंद्रदेव का यज्ञ करेंगे। तो बोले पिताजी कहाँ पे इसका वर्णन आता है कि यज्ञ करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है या आप अपने आप से करते हो। बोले बेटा क्यों अभी छोटा है, बोला मैं बड़ा हो गया 7 साल। बोले बेटा मेरे पिताजी भी करते थे, हमारे उनके पिताजी का नाम था पुरंजन। बोले मेरे पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, सब लोग इंद्र का यज्ञ करते थे इसलिए हम करते थे। बोले पर क्यों करते हैं। बोले बेटा हम किसान है ना, जो किसान होते हैं उनका जीवन चलता है वर्षा पे, और वर्षा के देवता कौन है, इंद्रदेव है वर्षा के देवता, तो इसीलिए हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पर अब क्या है ना कि कृष्ण ने मन में कुछ और ठानी हुई थी, उन्होंने सोचा था कि देखो अभी तक तो मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हूं, अब मुझे क्या करना है। भगवान के मन में एक बड़ी इच्छा रहती है, अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करना चाह प्रयास करता है तो उसके मन में जो अहंकार है, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, कृष्ण उसी समय प्लानिंग शुरू कर देते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, और उसके लिए नई नई तरकीबें निकालते हैं, नई नई तरकीबें निकालते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उसको रखते हैं कि उसका प्योरिफिकेशन हो जाए। क्या हो जाए उसका? बढ़िया से प्योरिफिकेशन हो जाए। जैसे एक बार हमने श्रीपाद आईना प्रभु से कथा सुनी कि कृष्ण अपने भक्तों की चिंता कैसे करते। एक लड़का था आईना प्रभु को, देर वॉज अ बॉय प्रैंकिश बॉय। प्रैंकिश मतलब शरारती लड़का। ये शरारती लड़का स्कूल में बैठा था और स्कूल में जहां बैठा था अपने बेंच में, तो उसके आगे एक लड़की बैठी थी। तो ये क्या करता है, लड़की के बाल लंबे होते हैं तो उस बालों को कभी ऐसे खोलता, उसमें कई कई बाल होते हैं, टू हेडेड हेयर्स जो होते हैं, उनको ऐसे खींच लेता, खेल रहा था और कभी खींचता कभी उसके अंदर जो है तिनके विनके लेके बांध देता। अब बालों में बेचारे किसी को भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है। तो ये लड़की जो है स्कूल से घर गई, घर गई तो उसने क्या देखा, जब ड्रेस चेंज करी तो पीछे पूरी ड्रेस पे इंक लगी हुई है और बालों में भी इंक लगी हुई है। उसकी माँ ने बोला, बेटा ये क्या? बोला, मैया वो शरारती लड़का मेरे पीछे बैठता है। पक्का? क्या बोलूं, परेशान हो चुकी हूँ उससे। बोला ठीक है बेटा, एक तरीका कर तू, ये जो शैतान बच्चे होते ना, ये बैक बेंचर्स होते हैं, जो सबसे पीछे बैठते हो शैतान होते हैं। अब देख लो कौन कौन बैठा है पीछे पीछे। बोले तो अब लोग पीछे मत बैठे हो, तो आगे आगे बैठना शुरू कर दिया। उसने आगे बैठना शुरू कर दिया। अब ये लड़का हार होने वाला था, ये क्या करता, भागता हुआ जाता आगे, फिर उसके आगे से घूम के पीछे जाता, कभी बेंच के ऊपर धड़ धड़ करके भागता, तो कभी उधर कूद जाता, कभी पीछे कूद जाता। और फाइनली इसने क्या किया, एक पेपर बॉल बनाई। स्कूल में बच्चे बनाते ना पेपर की बॉल, कितने लोगों ने बनाई, बस सब शरारती है इसमें। राधे गोविंद अभी भी। तो पेपर बॉल बना के फटाक से फेंकी उसके सिर पे लगी लड़की के, लड़की ने पीछे देखा, जैसी आई कॉन्टेक्ट हुआ शांति से बैठ गया, एकदम खुश हो गए, देखा कर दिखाया। अब ये लड़का करना क्या चाह रहा है बताओ, क्या करना चाह रहा है? हाँ, उसके अटेंशन सीक कर रहा है। आप सब एक्सपीरियंस लोग, उसकी अटेंशन सीक कर रहा है, अटेंशन सीकिंग द अटेंशन ऑफ दैट गर्ल। कभी कभी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से। आप देखो, ज्यादा अभी तो हमने नहीं देखी, 15 साल से कोई मूवी नहीं देखी, 15 साल से पहले जो मूवीज आई थी वो हमने देखी थी, तो उनमें हम देखते थे कि सारी मूवीज इसी बात पे होती थी कि जो हीरो होता है पहले वो हीरोइन को परेशान करता है, फिर वो हीरोइन उसको परेशान करती है, और फिर दोनों का रिलेशन हो जाता है। अटेंशन सीक करने का तरीका है, और अब हम आपको बताएंगे कहाँ से आया। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि एक दिन क्या हुआ, ये लड़का रोज कुछ ना कुछ करके परेशान करता रहा। और एक दिन क्या हुआ, गेम्स का पीरियड था, सब लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और ये लड़की जो है ग्राउंड के कॉर्नर पे खड़ी है और अपनी टोस पे खड़ी हो गई है और पूछे उचक के ऐसे झांक के अंदर ग्राउंड के अंदर क्या देख रही है, क्या देख रही है, बन गया काम। अब कितने में लड़का पीछे से आया, उसने उसके बाल खींचे और लड़की ने घुमा के रखता दिया स्पर्श हो गया। और फिर रेस्ट इन द स्टोरी, श्री श्री की भारी राव जी की। अब ये देखिए, ये ट्रिक है किसी का, किसी को, यू नो, बिकॉज इफ समवन वांट्स टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन अफेक्शन, दिस इज वन ऑफ द वे। अब श्री कृष्णा, आपको क्या लगता है वो गोपियों के पास जाके बोलते थे, हे भुवन सुंदरी, त्रिभुवन में तुमसे ज्यादा कोई आकर्षक नहीं है, मैं आपके लिए तो चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। सुना कभी आपने ऐसा कहीं कृष्ण को बोलते हुए? हाँ, क्या करते थे वो, वस्त्र चुराते थे, मटकियां फोड़ते थे, रास्ते रोकते थे, टोल मांगते थे, हर तरह से परेशान करते थे। एक बार, कई बार जैसे इस गोपियां अपने सिर पे मटकी लेके चलती थी, कृष्ण क्या करते थे, उस मटकी को फोड़ देते थे और उस मटकी में क्या होता था, मक्खन, घी और दही। अब हम आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप में से जो पुरुष शरीर में है, है ना, आपने सुंदर धोती कुर्ता पहना हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही, अभी हम गुड़गांव से आ रहे थे, जब बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मेरी धोती गीली अभी तक। तो जब वहां आप बाहर जाइए, धूप है कड़कती और आप एक मोहल्ले में से निकल रहे हैं, पर अचानक क्या हुआ, किसी ने आपके ऊपर पानी की बाल्टी उड़ाई थी और आप पूरे गीले हो गए, चारों तरफ सब सूखे हैं और आप गीले हैं, आप एक आदमी हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? ऑकवर्ड फील होगा ना, शर्म आएगी ना, यार ये क्या है, थोड़ा धूप में खड़े होकर सुखा ले। तो एक पुरुष शरीर में कोई व्यक्ति है उसको ऐसा फील होगा, सोचो कोई स्त्री के शरीर में हो, कोई लेडी भी अगर गीली हो जाए उसको कैसा लगेगा, और ज्यादा एम्बेरस फील करेगी। यस नो नो यस। अब कोई व्यक्ति अगर पानी से गीला हुआ हो तो चलो भैया धूप में खड़ा होकर सुखा लेगा, अब कोई घी से गीला हो गया हो उसका क्या होगा? और कृष्ण क्या करते थे, मैया मैंने मटकी नहीं फोड़ी पर फोड़ी, और मटकी फोड़ के और उसके अंदर से सारे घी से उस स्त्री को सिक्त कर देते थे, और वो जो लेडी है अब बताओ क्या करेगी, धूप में खड़े होकर सुखा नहीं सकती, कितनी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी उसके लिए, ऐसा परेशान करते थे कृष्ण। अब ऐसा परेशान करने के बाद कृष्ण क्या उन गोपियां, वो जो गोपियां थी कृष्ण से नफरत करने लग गई, नफरत करने लग गई? यस नो नो यस नो। वो गोपियां उनसे नफरत नहीं करने लगी। अब इसका पता क्या चलता है कि कृष्ण का यही स्टाइल है, कृष्ण का यही स्टाइल है। अब वो अपने भक्तों को अपने नजदीक लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, बिकॉज उनकी इच्छा है, जैसे वो रोमियो होता है ना, उसकी इच्छा होती है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की। सो कृष्णा वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अफेक्शन एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो कह रहे जितने भी ए हैं सब मेरे लिए, ऑल फॉर मी। उसके लिए वो अपने भक्तों को अपने नजदीक लाने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। और जब भक्तों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो भक्तों को समझ जाना चाहिए। जनरली भक्त दुखी हो जाते हैं, मैं भगवान की भक्ति किया, मैं रोज माला का जप करता हूँ, हरे कृष्णा बोलता हूँ, भले श्री राम राम होता है वो, पर मैं नाम लेता हूँ, मेरे साथ कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? भैया वो आपके साथ ऐसा करेंगे क्योंकि वो आपसे ही प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते, वो आपको अपने नजदीक लाना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आपको परेशान कर रहे हैं, तो अब वो गोपियों को परेशान कर रहे थे सामने से जाके, हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि सामने से आगे करें, सही बात है कि? पर एक जो डिवोटी होता है वो हर परिस्थिति में देखता है कि ये इसमें पक्का कृष्ण का कोई हाथ है, पक्का कृष्ण का कोई हाथ है। एक बार हम एक स्थान पे थे तो एक वरिष्ठ वैष्णव हमारे साथ बैठे थे, तो एक व्यक्ति है थोड़ी बदमाशी करता था, थोड़ा बदमाशी करता है वो, तो वो जो वरिष्ठ वैष्णव थे उन्होंने हमें बोला कि मैं ये सोचता हूं, वो जो बदमाशी करने वाला व्यक्ति है वो मुझे बोले, मैं ये सोचता हूं कि आपको उनके साथ सेवा करने में ज्यादा समय दिखाना चाहिए। तो ये पीयूष गोयल पूरे साथ में बैठे हुए थे, बोले कि प्रभु जी भक्त लोग आपकी भक्ति बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां परेशानी आए वहां क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, भक्ति। तो कृष्ण हमारे लिए जान बूझ के ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं, हम उनके नजदीक आए। अब वो जब हमारे लिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे तो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, उनको कोई चीज चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो उनका काम करे। अब वो इंस्ट्रूमेंट किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, जो उनके उनको बनाएंगे ना, मतलब अपने भक्तों को ही इंस्ट्रूमेंट बना के हमारा प्योरिफिकेशन करेंगे। यस नो नो यस। तो जब भक्तों के माध्यम से हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, इसका मतलब तो पक्का कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि भक्त अगर हमारे को परेशानी दे रहे हैं, और भक्त किसका नाम ले रहे हैं, किसका, किसका, चंडी का, किसका, जोर से बोलो, हाँ कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अब जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण उसको यूज कर रहे हैं, और वो अगर हमें परेशान कर रहा है तो इसका मतलब बन गया था। उस समय तो और खुश होना चाहिए कि अब तो कृष्ण ने मुझ पर नजर डाल दी। तब यहां पर नजर डाली कृष्ण ने नंद महाराज पे नहीं, याद है ना सबको हम कहां थे? हाँ, नजर किस पे है कृष्ण की? इंद्र पे, कि अभी इंद्र की रिपेयरिंग करनी है। है तो वो मेरा दास है, तो वो मेरा इटर्नल सर्वेंट, और क्योंकि उसको अच्छे पोजीशन पे बिठा दिया है तो इसका दिमाग क्या हो गया? खराब हो गया। क्योंकि जो पोजीशन होती है, पोजीशन होती है और पोजीशन के साथ अगर ऐश्वर्य भी हो तो आदमी का दिमाग खराब कर देता है। एक राजा थे, उनका नाम था महाराज नहुष। क्या नाम था? महाराज नहुष। उनके साथ क्या हुआ? वो बहुत अच्छे राजा थे, बड़े पायस थे, पुण्य आत्मा थे, और पर उनको श्राप मिल गया। उस श्राप की बदौलत वो बन गए अजगर, और उनका श्राप यह था कि आप इस अजगर की योनि से तब मुक्त होगे जब इस संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से आप बात करोगे, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से। तो महाराज नहुष अब अजगर बने, एक कुएं में पड़े थे, और उनको ये बोला था, अगस्त मुनि ने श्राप दिया था कि जब भी तुम्हारे पास जो कोई व्यक्ति खुद से पहुंच जाएगा या कोई भी जानवर, उसको तुम खा लेना, ये तुम्हारा भोजन हुआ करेगा। और जिस दिन कोई सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति पृथ्वी का आपसे बात करेगा, आप उससे डिस्कशन करोगे, तो क्या होगा? आप इस योनि से मुक्त हो जाओगे, अजगर योनि से। तो कई साल बीत गए, सैकड़ों हजारों साल बीत गए, और उसके बाद महाराज नहुष के ही उनकी जनरेशन में क्या बनेंगे, उन्हीं के वंश में पांडव भी निकल गए। और ये पांडवों को जब वनवास मिला, वनवास मिलने के बाद एक दिन भीम जो है वो भोजन वगैरह की व्यवस्था करने जाते थे, परंतु एक दिन क्या हुआ, भीम वापस नहीं आए। जनरली जब भीम वापस नहीं आते थे, घर में युधिष्ठिर महाराज और कुंती महारानी को ये चिंता नहीं होती थी कि भीम को क्या हो गया, उनकी चिंता होती थी किस किस का उसने क्या क्या कर दिया। पर जब बहुत देर हो गई तो फिर सबने विचार किया कि अब तो ढूंढने जाना पड़ेगा, और उनको ढूंढने के लिए, जैसे अगर कोई गुम हो जाए तो ढूंढना कितना मुश्किल है, किस डायरेक्शन में जाए क्या पता, और स्पेशली जब फोन भी ना हो। पर भीम को ढूंढना बड़ा आसान था, घर से निकलो और जहां जहां के पेड़ पत्थर चट्टाने टूटी हुई है वो रास्ते पे वो निकले। उनमें इतनी शक्ति थी, वो अपनी शक्ति दिखाते दिखाते सब तोड़ते ताड़ते जाते थे। तो चलते 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 गए, एक कुएं के पास देखा, कुएं के पास ही एक अजगर ने उनको बांध रखा है, और इतना शक्तिशाली अजगर है वो कि भीम भी अपना को छुड़ा नहीं पा रहे, भीम भी प्राण त्याग दे ऐसी स्थिति है, पर वो प्राण नहीं त्याग रहे। और ये अजगर कौन है? महाराज नहुष। और उनको मालूम है कि भीम को पकड़ूंगा तो युधिष्ठिर महाराज आएंगे, जो कि इस पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज से वो चर्चा करने लगे, और उन्होंने कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए युधिष्ठिर महाराज ने, संसार में अधर्म क्यों बढ़ता है, कई सारे प्रश्न के उत्तर दिए। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए, दो चीजें मैंने आप में देखी है, एक तो आप में इतना बल है कि आप भीम को भी, मतलब भीम जैसा व्यक्ति आपके चंगुल से छुटा नहीं पाया आपने। दूसरी चीज, जो प्रश्न आप अजगर की योनि में होकर पूछ रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं पूछ सकता, आप कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, मेरे को ये बताइए कि आप इस योनि में कैसे आए। तो महाराज नहुष ने बोला कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े व्यक्तित्व, अगर उनके पास दो चीजें आ जाए, एक अच्छी पोजीशन आ जाए और यश आ जाए, तो अगर थोड़ी सी भी असावधानी बरती तो उसकी यही गति होगी जो मेरी हुई। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि कैसे हुआ ये? तो महाराज नहुष ने बताना शुरू किया कि महाराज नहुष इतने पुण्यवान राजा थे और पूरी पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य था उनका, एक छोटे से क्षेत्र के राजा नहीं थे, पूरी पृथ्वी पे साम्राज्य था और उनके साम्राज्य में हर व्यक्ति खुश था, हर व्यक्ति खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। एक छोटे से व्यक्ति की, जानवर की परेशानी के लिए भी महाराज नहुष जो है इमीडिएटली डिसीजन लिया करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इंद्र से एक गलती हो गई जिससे उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और उस समय पे इंद्र को तपस्या करने के लिए अपने राज्य को, अपने स्वर्ग को, अपने सिंहासन को छोड़ना पड़ा लगभग एक साल के लिए। वो एक साल मनुष्यों का नहीं, देवताओं का एक साल, लगभग मनुष्यों का 36,000 साल होते हैं। तो 36,000 साल के लिए उनको क्या छोड़ना पड़ा, सब सुनते हैं ना, क्या छोड़ना पड़ा, राज्य मतलब स्वर्ग छोड़ना। तो सारे देवताओं ने और जो वहां पे ऋषिगण थे उन्होंने बोला कि सिंहासन खाली होना ठीक बात नहीं है, किसी ना किसी व्यक्तित्व को इस सिंहासन के ऊपर विराजमान होना पड़ेगा, नहीं तो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो सबका कंबाइंड डिसीजन था कि जो इस समय पृथ्वी पे साम्राज्य कर रहे हैं महाराज नहुष, उनसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति इस सिंहासन के लिए कोई नहीं मिलेगा। फाइनली सारे देवताओं ने मिलकर बृहस्पति जी के साथ जाकर के इनको अप्रोच किया कि आप आइए स्वर्ग के सिंहासन को संभालिए और इंद्रदेव की पदवी को संभालिए। महाराज नहुष बोले कि कहां भगवान इंद्र, कहां मैं साधारण सा जो है संसार का प्राणी, मृत्यु लोक का प्राणी। तो वो तैयार नहीं हो रहे थे, पर बहुत उनके ऊपर सारे देवताओं ने जब प्रेशर किया, फिर बोला कि आप इसको आज्ञा स्वीकार कीजिए, सेवा के रूप में कीजिए, और फाइनली महाराज नहुष तैयार हो गए। महाराज नहुष उस सिंहासन पे जाने के लिए तैयार हो गए, और अब जब जाकर के वो इंद्र के सिंहासन पे बैठे हैं तो सूर्य देव भी उनके आगे का, जबकि सूर्य देव उनसे कई ज्यादा समर्थवान हैं, कई ज्यादा शक्तिशाली हैं, परंतु ये एक नियम है कि जितने भी देवता हैं वो सारे इंद्र देव की आज्ञा का पालन करते हैं। तो सूर्य देव उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए, चंद्र उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए, वरुण उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए, वायु देव उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए। अरे इस सृष्टि के अंदर जितनी भी कंट्रोलिंग डीटीज हैं वो सारे इंद्रदेव की आज्ञा का पालन, मतलब नहुष महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि का सारा नियंत्रण उनके पास आ गया। अप्सराएं जो इंद्रदेव के सामने नाचा करती थी, अब किसके सामने नाचने लग गई, नहुष जी के सामने। और जो म्यूजिशियन, जो गंधर्व आकर के गान वादन किया करते थे इंद्रदेव के सामने, अब वो किसके सामने करने लग गए, नहुष महाराज के सामने। बैठ कई दिन बीते इस बात को, बड़ा अच्छे से साम्राज्य संभाल रहे थे। तो एक दिन उनके मन में आया, क्योंकि जो इंद्रदेव की पत्नी है सची देवी बड़ी सुंदर है, तो उनके मन में आया कि देखो इंद्र का साम्राज्य मेरा साम्राज्य, इंद्र के सारे डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट, इंद्र के सारे सर्वेंट मेरे सर्वेंट, इंद्र की सारी अप्सराएं मेरी अप्सराएं, इंद्र का सिंहासन मेरा सिंहासन, पर सिंहासन पे बैठने वाली मेरी क्यों नहीं हुई। अब इन्होंने जाके सची देवी को अप्रोच किया कि हम आपका संग करना चाहते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है वहां पे राजा को, जो राजा की पदवी पे बैठा होता है उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है, पर ब्लाइंडली सम्मान नहीं दिया जाता। तो सची देवी ने कहा कि ठीक है आप राज सिंहासन पे हैं, हम विचार करेंगे, आपको बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है समय देते हैं आपको। सची देवी ने जाके इमीडिएटली सिचुएशन को देखते ही किसको अप्रोच किया, अपने गुरुदेव, कौन है उनके गुरु, बृहस्पति जी। जब बृहस्पति जी को अप्रोच किया तो बृहस्पति जी ने बोला कि ठीक है, उसको बोलो कि तुम्हारा प्रपोजल हमें स्वीकार है। बोले क्या बोल रहे हो गुरुदेव आप, बोले मेरी बात सुनो, उसको बोलो कि तुम्हारा प्रपोजल हमें स्वीकार है पर एक कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि तुम जब आओगे तो पैदल मत आना, रथ पे मत आना, पालकी में आना, और जिस पालकी में आओगे पालकी कोई तुम्हारे सर्वेंट नहीं उठाएंगे, दास नहीं उठाएंगे। तो बोले कौन उठाएंगे, बोला कि सप्त ऋषियों से पालकी उठवा के आना। तो सची देवी बोली कि वो ऐसा कार्य करेंगे, बोला अभी वो लस्ट से पागल है, कुछ भी करेगा। और सची देवी ने जाके जब उन्होंने दोबारा बोला कि देवी क्या विचार किया आपने, बोला स्वीकार किया आपका प्रपोजल, पर एक शर्त है मेरी, आप जब मेरे पास आओगे तो मेरे पास आना ऐसी पालकी पे बैठ के जिसको उठाने वाले कौन होंगे, सप्तऋषि। कौन?
सप्तऋषि।
मैत्रेय इत्यादि, मैत्रेय नहीं, मारीचि इत्यादि, मारीचि अत्रेय और कौन है, पुलस्त प्रहु इत्यादि इत्यादि, इन सारे ऋषियों के द्वारा वो उठाया हुआ होना चाहिए। नरुष महाराज ने बोला मैं राजा हूं और मुझे संतुष्ट करने के लिए मैं इतने बड़े कार्यभार को संभाल रहा हूँ, पूरे पृथ्वी को, पूरे स्वर्ग को संभाल रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी इस समय वो चल रहा है मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ मैं, तो ये जो सप्तऋषि है वो तो मेरी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को भी तो सुखी रहना, इल्यूजन में आ जाता है ना जब वो पोजिशन पे होता है, उसको लगता है कि मुझे सुखी रहना जरूरी है, नहीं तो मैं संसार कैसे चलाऊंगा। तो उन्होंने बोला सप्तऋषियों को, सप्तऋषि तैयार हो गए, उन्होंने उठाई पालकी चलने लगे। अब ये सप्तऋषियां आज तक किसी ने इनको एक किलो का भार उठाने के लिए भी नहीं बोला था, पर आज ये क्या उठा के चल रहे हैं, पालकी चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। सप्तऋषि हैं, कोई वो क्षत्रिय तो है, धड़ 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 चलेंगे, धीरे धीरे चल रहे थे। और महाराज नाहुष जो है ना, उनके हृदय में इतना आक्रांत था, उनका हृदय जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, तो बोलते हैं, तो संस्कृत में जल्दी को एक शब्द बोला जाता है सर्प, क्या बोलते हैं, सर्प, तो वो सबको बोलते सर्प सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सामने से अगस्त मुनि आ गए, अगस्त मुनि ने देखा ये क्या कर रहा है, सप्त ऋषियों से पालकी चलवा रहा है, ऊपर से बोल रहा है सर्प सर्प। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि सर्प सर्प बोल रहा है ना, आज से तू सर्प है, अभी तेरे को सर्प की योनि मिल जाएगी। तब इनका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इन्होंने बताया ये सारी बात युधिष्ठिर महाराज को, और बोले कि तब से मैं सर्प योनि में हूं, फिर मैंने जब अगस्त मुनि से मैंने प्रार्थना करी कि मेरे को क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब अगस्त मुनि ने बोला कि ठीक है तुम्हारा निवारण होगा यदि तुम्हारे से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बात करेगा, और साथ ही साथ तुम्हारा भोजन की व्यवस्था भी बनता है। तो बेसिकली जब किसी के पास ये शक्तियां आती हैं तो वो स्वाभाविक होता है उसके लिए, स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि उसको कोई समझाता आके, स्वाभाविक रूप से उसका मन जो है बहल जाता है, चंचल होता है, वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के पास धन ऐश्वर्य और बड़ी पोजीशन आ जाती है और यश आ जाता है विशेष रूप से, तो उसको ना इमीडिएटली सावधान हो जाना चाहिए कि अब माया देवी तो चारों तरफ से अटैक करने के लिए तैयार हो गई। तो इंद्रदेव बेचारे भगवान के भक्त हैं, अब वो भी इस अहंकार से प्रभावित थे कि सब कुछ चलाने वाला मैं हूं, और भगवान श्री कृष्ण इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने नंद महाराज से बोला, अब नंद महाराज को वो दूसरी फिलॉसफी देने लगे। फिलॉसफी क्या देने लगे कि देखो पिताजी, भगवान है ना अपना काम साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो नास्तिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, बोलते हैं कि देखो सब कुछ आप करो, जो कर्म उसका फल आपको मिलेगा, आप बीज बोओगे तो पौधा उगेगा, आप बीज नहीं बोओगे तो पौधा नहीं उगेगा। तो इसमें इंद्र ने क्या कर लिया, और वैसे भी इंद्रदेव के पास तो कुछ भी राइट नहीं है करने का, आप जैसा कर्म करोगे उसका फल दे सकते हैं, उससे ज्यादा अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकते। नंद महाराज के पदले वाली बात भी नहीं पड़ी। फिर श्री कृष्ण ने बोला देखिए पिताजी, आपको एक बात बता, आप इंद्र की पूजा करना चलो ठीक है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी पूजा करना है, उसकी जो हमें दिखता है या जो हमें नहीं दिखता। क्या इंद्र ने कभी दिखे आपको, जहां पे इंद्रदेव की पूजा नहीं होती बारिश तो वहां पे भी होती है, समुद्र पे भी बारिश होती है, वहां पे कोई यज्ञ करता है क्या उनके लिए, नहीं करता। पर यहां देखो हमारा पालन करने वाले कौन है, ब्राह्मण है, गैया है, और ये गोवर्धन है, ये हमारा पालन कर रहे हैं। नंद महाराज और बाकी ब्रजवासी वहां खड़े थे, बोले ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली। तो कृष्ण अब सोचे कि अब सब काम मिल गया। बोले नंद महाराज फिर तो हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों की गौओं की और किसकी गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो नंद महाराज बोले बिल्कुल सही है, हम गोवर्धन की गायों की और ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। तो कल हम यहां पर इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे और उसके बाद फिर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण बोले नहीं, इंद्र की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो आप लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है, यहां पे जितनी सामग्री इकट्ठी आपने पहले से कर रखी है दोबारा दोबारा आप कर नहीं पाओगे। ये सारे से हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। पर अब ना कृष्ण ने देखा कि कोई ट्रिक नहीं चल रही थी, अब वो इस बात में तो कन्विंस हो गए थे कि पूजा करनी चाहिए, पर कृष्ण की ना कोई ट्रिक नहीं चल रही थी इनके कोई भी बात। अब कृष्ण ने क्या बोलना शुरू किया, पिताजी पता है मैं क्या सोचता हूं, मुझे तो तभी सबसे ज्यादा आनंद होगा जब आप ना गोवर्धन महाराज की पूजा करोगे, क्योंकि गोवर्धन महाराज जो है ना हमें बड़े प्रिय हैं, ये गैया हमें बड़ी प्रिय हैं, ये ब्राह्मण हमें बड़े प्रिय हैं, आप जब इनकी पूजा करोगे ना हमारे मन को बड़ा आनंद होगा। पिताजी आप सब लोग क्या कहते हैं, और इतना सुंदर हम तो बना नहीं सकते ना, इतना सुंदर क्यूट सा स्वीट सा चेहरा बना के बोलते हैं पिताजी करोगे। सब बोले ठीक है करेंगे, सब करेंगे, हम आज से केवल गोवर्धन की पूजा की तैयारी करेंगे। तो अब जैसे ही उन्होंने बोला तो कृष्ण बोले सुनो सुनो सुनो, एक और भी बात है, जो भी इस यज्ञ में इंद्र की पूजा करने जाएगा अंधा हो जाएगा, लड़कियों को जब बुढ़े पति मिलेंगे और घर में परेशानियां आ जाएंगी, बीमारियां जल्दी पकड़ लेंगी, और जो भी गोवर्धन की पूजा करेगा उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा, लड़कियों को अच्छे पति मिल जाएंगे और किसानों की फसल बढ़िया हो जाएगी, हर तरफ आनंद ही आनंद बरसेगा। अब आप डिसाइड कर लो सर, अब तो भैया और कोई रास्ता ही नहीं था, अब तो एक ही व्यक्ति की पूजा होने वाली थी और वो कौन है, श्री गिरि गोवर्धन महाराज की, गिरधारी जी की। अब यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। तो सबने पूछा, देखो भैया हमने कभी गोवर्धन की पूजा तो करी नहीं, लाला तू ही बता दे गोवर्धन की पूजा कैसे होती है। बोले देखो भैया सबसे बाबा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, किसकी, फिर गायों की पूजा करेंगे, गायों की और ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और गोवर्धन की पूजा के लिए जितना भी अन्न आपने बनाया और बनाओ 56 भोग लगाएंगे, और 56 भोग किस लिए लगाएंगे, गोवर्धन उठाया था जब, पर ये इंस्ट्रक्शन तो पहले दे दी थी उन्होंने 56 भोग की। तो 56 भोग 56 व्यंजन और कई सारी चीजें श्री कृष्ण ने बताई कि कैसे कैसे पूजा होगी, सारे विधि विधान बताए पूजा के, और सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा की गई, गायों की गई, और फिर श्री कृष्ण ने बताया कि जब इन सबकी पूजा हो जाएगी भोग लगेगा और उसके बाद इस पूरे ब्रज मंडल में और ब्रज के आसपास के जितने भी लोग यहां पे आएंगे सबको खिलाना है, यहां तक कि कुत्ता भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तैयार हो गए सब, तैयार हो गए, जब यज्ञ की तैयारी की गई, पूजा की तैयारी की गई, भोजन लाया गया, जैसे ही पूजा शुरू की वहां पे लगभग 8 मील ऊंचे थे उस समय गोवर्धन, कितने 8 मील ऊंचे, मतलब 12 किलोमीटर ऊंचे, जिस समय श्री कृष्ण लीला कर रहे थे उस समय गोवर्धन 12 मील ऊंचे थे, सॉरी 8 मील 12 किलोमीटर ऊंचे, 12 किलोमीटर ऊंचे गोवर्धन वहां पे विराजमान है, और वहां पे अचानक इतने बड़े एक देवता प्रकट हो गए, जितने बड़े गोवर्धन उतने ही बड़े ऊंचे शरीर वाले, उनका शरीर विशाल काय था पर उनके हाथ की कोमलता, उनके चेहरे का शक्ल सब कुछ कृष्ण के जैसी थी। सब देखने लगे, अरे ये कौन है, अरे कौन आ गया ये, तो कौन आ गया ये। तो कृष्ण ने फटाफट दंडवत प्रणाम किया, कृष्ण ने बोला भैया ये जिनकी पूजा कर रहे हो वो आगे प्रणाम करो, सब सब ने दंडवत प्रणाम किया, सब ने पूछा कौन है आप, तो बोले कि मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, आप सबकी पूजा से प्रसन्न होकर के मैं यहां से आपकी पूजा स्वीकार करने आया हूं। कृष्ण बोले देखा इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, आया था एक बार भी? देखो ये कैसा है, ऐसा कोई देवता आपने देखा जिसकी पूजा करो आ जाओ? ये है गोवर्धन महाराज, ये है हमारे स्वामी, हमने पूजा करी और ये आ गए। ये गोवर्धन महाराज की भोग लगाया तो खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कुछ ब्रजवासी बोले ये इंद्र बदमाश, हम इतना भोग लगाते थे कभी खाता भी नहीं था। देखो ये महाराज हमारे, ये गोवर्धन जी कितने बढ़िया से हमारे भोग को स्वीकार कर रहे हैं। जय हो गोवर्धन। अब वो गोवर्धन महाराज क्या कर रहे हैं, सीधे हाथ से खा रहे और दूसरे हाथ से कभी बोलते अन्य ओर, अन्य ओर, और लाओ, और लाओ, और फिर जब वो और आ जाता तो इंद्र की तरफ करते बेटा तेरे लिए बना था, खाऊंगा मैं सारा। इस प्रकार से जितना भोजन था, जितना कुछ कुक हुआ था और स्पेशल दोबारा कुकिंग हुई, सब खा गए। कृष्ण को आके बोले सारे ब्रजवासी, भैया तू ना फंसा दियो हमें, अब तो कुछ खाने को ना मिलेगा, सारा तो तेरा देवता खा गया, हम क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। कृष्ण बोले चिंता मत करो, सब वो पूरा कर देंगे, गिरिराज महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखो, वो सबका पालनहार है, आपका भी पालन करेंगे, हमें बड़े प्रिय हैं। तो जब उन्होंने सब पा लिया, बड़े प्रसन्न हो गए, तो गिरिराज महाराज जो है खड़े हुए और बोले कि सब लोग, आप सारे ब्रजवासियों से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो, जिसके मन में जो इच्छा है वो वर मांग लो। अब ये जो प्रश्न है ना, ये ब्रजवासियों के लिए बड़ा भारी पड़ेगा, मन में तो कोई उनके पास कुछ है ही मांगने के लिए। ब्रजवासी जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता, जितने भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको एक ही चीज चाहिए होती है, क्या? हाँ, कृष्ण खुद, हमें भी प्रेम ना मिले, मरते तो हम मरे, जो शुद्ध भक्त है मतलब हमारी तरफ मेरे वाले बंधु जो शुद्ध भक्त है उनके मन में एक इच्छा होती है, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए हमारे साथ जो भी हो जाए। हम सबने वो कथा सुनी है ना गोपियों वाली, जिन्होंने अपनी रज उठा के दी थी, कि मतलब तुम्हारी खुशी में अगर हम जन्म जन्मांतर अनादिकाल अनंत काल तक नरक में भी सड़ती रहेंगे तो भी खुश हैं, और हमारे इतने कष्ट में हम उठाएंगे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको पता भी नहीं कि हम उसके लिए कष्ट उठा रहे हैं। नहीं तो अगर हम किसी के लिए कष्ट उठाते तो बता देते ना, हरि बोल प्रभु जी, हमने करवाया था आपका वो काम, है ना, ठीक हो गया सर, ठीक ठाक हो गया था ना, हाँ बस मैं पूछने के लिए फोन किया। तो अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमारे मन में भावना होती है कि दूसरे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि करने वाला कौन है। पर यहां पर गोपियां प्रेम कैसा दिखा रही है कि हम केवल काम ही नहीं कर रही तुम्हारा, तुम्हारे केवल सर का दर्द दूर हो जाए उसके लिए हम जन्म जन्मांतर तक कष्ट उठाने को तैयार है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान की प्रसन्नता, भूख लगी है सबको? ठीक, तो कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, तो अभी इनके मन में कुछ था ही नहीं, तो सबने यही मांगा कि बस हम ये नंद महाराज का पुत्र हमसे खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, अब प्रकट हो गए सारे ब्रजवासी, एक दूसरे को देखने लगे कि मतलब ये सपना था क्या था, और फिर क्या हुआ, अचानक जितना भी वहां पे भोजन जो खाया था उन्होंने सारे बर्तन देके फिर से भर गए। भगवान को अगर आप खिलाओगे तो भूखे नहीं मरोगे, वो आपका फिर से भंडार भर देंगे, सब कुछ वापस आ गया प्रसाद रूप में। तो सबने बोला कि बताए भैया कहेंगे अभी क्या करना है, तो बोले कि देखो अभी पूजा पूरी नहीं हुई, ये पूजा पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गोवर्धन की परिक्रमा करनी पड़ती है। अब जब गोवर्धन की परिक्रमा वो करने लगे तो बताओ सबसे पहली गोवर्धन की परिक्रमा किसने करी, हम में से कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा करी? अच्छा बताओ सबसे पहली गोवर्धन परिक्रमा किसने करी, हाँ बोलो बोलो, हनुमान जी ने, यस हनुमान जी ने, हनुमान जी दूसरे व्यक्ति थे, उनसे भी पहले एक व्यक्ति थे, बताओ सबसे पहले किसने कही? चलो ये वाला पास टाइम फिर कभी सुनाएंगे। सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा स्वयं जो पर्वतों के राजा हैं, कौन है पर्वतों के राजा? हिमालय, हिमालय पर्वत परसोनिफाइड आए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने। सबसे पहले जब वो शैमल द्वीप में थे, गोवर्धन पहले पृथ्वी पे नहीं थे, मतलब जम्बू द्वीप जहां पे हमें दिखते हैं वृंदावन में, वहां नहीं थे, पहले शैमल द्वीप पे थे, वहां सबसे पहले परिक्रमा उसकी करी थी हिमालय में। और ये तीसरी परिक्रमा करने वाले थे कौन? स्वयं श्री कृष्ण। और जब ये परिक्रमा शुरू हुई तो इसमें सबसे पहले आगे आगे चली रही थी गैया, सारी गायें, क्योंकि कृष्ण को बड़ी प्रिय है गैया। उनके पीछे पीछे ब्राह्मण, ब्राह्मणों के पीछे गुरुजन, गुरुजन मतलब घर जो कम्युनिटी के बड़े लोग थे, जैसे नंद महाराज, उपनंद इत्यादि, उनके पीछे वृद्धा स्त्रियां, उनके पीछे जो कन्याएं हैं, मतलब विवाहित और अविवाहित जो भी यंग लेडीज हैं वृंदावन की, जैसे राधा रानी, चंद्रिका, चंद्रावली इत्यादि, और उनके पीछे कई सारे गोपों का समूह प्रोटेक्शन के लिए, और सबसे पीछे उनके जो शूद्र कम्युनिटी है वो पीछे उनके असिस्ट करने के लिए, और बहुत लंबा कारवा जो है गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चला। सबने परिक्रमा करी, बड़ा आनंद हुआ, आनंद करके सब अपने अपने घर चले गए। अब वहां पे इंद्र महाराज ने बोला, मैंने सुना है कि इस बार कुछ यज्ञ वगैरह का कुछ आया नहीं इस बार यहाँ पे, क्योंकि जब आहुति चढ़ाते हैं यज्ञ में किसी देवता के लिए उनके पास पहुंचती है। इंद्र ने बोला कि कुछ गड़बड़ लग रही है, जरा चेक करके तो आओ। तो बोले, महाराज इस बार इन्होंने जो आपका सारा भोजन, आपका जो सारी पूजा थी वो गोवर्धन को अर्पित कर दी, और पर्वतों से दुश्मनी है इंद्र की, क्योंकि पहले ही कुछ पर्वतों के, सारे पर्वतों के नहीं, काफी सारे पर्वतों के पर लगे होते थे, और ये उड़ते थे पर्वत। और क्या होता था, ये पर्वत उड़ते थे, उड़ते 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 कहीं भी जाके इनका मन आ जाए वहां जाके बैठ जाते थे। अब जब वहां बैठते नीचे गांव के गांव तबाह, तो इंद्र क्योंकि राजा है, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने सारे पर्वतों के जो पंख थे वो काट दिए। इसको मायथोलॉजी में समझना, ये फैक्ट है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इसका प्रमाण भी है। पता क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण है कि आज का पर्वत उड़ते ही नहीं, देखा आपने उड़ते हुए पर काट दिए इंद्र ने कुछ, तो इसलिए दुश्मनी है पर्वतों से। तो अब बोले कि मेरा दुश्मन है पर्वत, और इसको ऑफर कर दिया। बोले कि भैया देखो, ऐसे लोगों को ना जीने में कोई अधिकार नहीं है। संवर्तक, संवर्तक बादल है जो प्रलय के समय में बुलाए जाते हैं, उन बादलों को बुलाया और बोला, विद्युत आप भी जाओ, विद्युत देवता आप भी जाओ, इस ब्रज मंडल को तहस नहस कर दो, पूरी तरह से डुबो दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। भरी दोपहर में रात जैसा अंधेरा हो गया, क्योंकि एकदम काले काले बादल जो है पूरे आकाश मंडल पे छा गए, और अंतर देखने तक की कोई जगह नहीं रह गई, और अचानक उत्तरी दिशा से जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई, बिजली कड़कना शुरू हो गई। सारे ब्रजवासी बोले, ये क्या हो गया? सब घबराने लग गए। अचानक बूंदे गिरने लगी, पर वो बूंदे कैसी थी? जैसे कि एक हाथी की जितनी एक बूंद। और बाद में जब वो वर्षा होने लगी, बाद में तो वर्षा ऐसी थी कि मानो हाथी के साइज के मोटे लंबे ऊंचे ऊंचे पिलर गिर रहे हो नीचे, ऐसे पानी गिरने लगे, बड़े कष्टकारी। सारे ब्रजवासी बोलने लगे, अरे भैया हमने इंद्र की पूजा नहीं करी ना, तो सारे कहीं इकट्ठे हुए, सब जब इकट्ठे हो गए भाग भाग के, क्या करें नंद महाराज क्या करें? तो सबने बोला कि, नंद महाराज ने बोला, इस सारी परेशानी का एक ही कारण है। सब बोले क्या? कि हमने इस कृष्ण की बात मानी। अब फाइनली कृष्ण वहां पहुंचे, बोले नहीं, गिरिराज महाराज इंद्र से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वह हमारे पालनहार हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो सब गिरिराज जी के पास, सब भागकर गिरिराज जी के पास पहुंचे, और एक अद्भुत तरीके से कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज जी को प्रणाम करके गिरिराज जी को उठा लिया। लो हैरान होकर कैसे उठाया और कहां उठाया दुर्गा जी को, छोटी उंगली पे नहीं, अपने पाम पे, हस्त पे उठाया। अभी आप देखोगे यहां नहीं, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का हाथ कैसे है, वो गिरधारी है, वो भी तो ऐसे हाथ उठाया, हाथ से उठाया उन्होंने, उठा के बड़े मिस्टिकल तरीके से अंदर प्रवेश कर गए और सबको बोला सब आ जाओ अंदर। जब अंदर जाने लगे तो देखा चारों तरफ 12 एम्बेडेड स्टेयर्स बनी हुई, रत्न जड़ित सीढ़ियां बनी हुई हैं और उन रत्न जड़ित सीढ़ियों से सब नीचे उतरने लगे। बोले अरे तो दूसरा वैकुंठ आ गया माना, और अंदर रत्न जड़ित घर बने हुए हैं, झरने बह रहे हैं अंदर, अंदर जमुना जी अलग से बह रही हैं, सारी फैसिलिटीज जो एक व्यक्ति को पूर्ण आनंद भोग करने के लिए चाहिए हो सकती है वो सब है। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं और कृष्ण ने बोला सबके जिसका जो जो अधिकार है, जैसे जो ज्यादा पोजीशन वाले लोग हैं उनको अच्छे घर दे दो और सबको अपने पोजीशन के अनुसार सब अलॉट कर दो। पर कोई सबको अलॉट कर दिया गया, सब बढ़िया बढ़िया जगह है, झरने बह रहे हैं मस्त, एकदम ठंडी हवाएं चल रही आनंद देने वाली, तो सब कोई भी उन घरों में नहीं गया। सबकी चिंता क्या थी, कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया इतना बड़ा, कृष्ण बोले कि ये बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा पूरे गोवर्धन में उस सांप के सब नीचे आ गए और सबसे ज्यादा चिंतित एक ही व्यक्ति था, पता कौन, उन ब्रजवासियों में बताओ कौन। जब किसी बच्चे पे कोई परेशानी होती है या बच्चा सबसे ज्यादा कष्ट उठाता है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है, माँ, यशोदा मैया सबसे ज्यादा परेशान कि हाय मेरे लड़के ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया, हाय मेरे लड़के ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया। कृष्ण बोलते हैं मैया मैंने नहीं उठाया, ये गोवर्धन महाराज खुद ही उठ गए। बोले कैसे, देखो इतना आसान है ये, क्या किए पहले हाथ ऐसे रखे थे, कह रहे देखो कितना आसान है, क्यों ऐसा कर लिया हाथ, ऐसा हाथ करने पर देखो, बोले देखो कोई कष्ट हुआ, गोवर्धन और ऊपर उठ गए। फिर ऐसा करते हुए बोले देखे मैया अब देखो, वो अपने जैसे सर्कस में बच्चे दिखाते ना कि मैया अब देखो, मैया कह रही हाय मेरा लड़के का क्या होगा, वो माता बार बार बेहोश होती फिर उठते खड़ी होती, हाय मेरा लड़का, फिर बेहोश हो जाती फिर मेरा, हाय मेरा लड़का। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, मधु मंगल जी थे वहां पे कृष्ण के एक फ्रेंड, ब्राह्मण फ्रेंड, और ये कृष्ण लीला के जोकर है, क्या है कृष्ण लीला के जोकर, ये कुछ भी कर सकते हैं वहां। बोले मैया तुम भी, आपको लगता है कि तुम्हारा लड़का उठा सकता है गोवर्धन है, एक कंबल उठाने का दम तो है ना इसमें, ये गोवर्धन उठाएगा। तो यशोदा माई बोली बोले किसने उठाया, बोले ब्रह्म तेज से उठ रहा है, ब्राह्मणों के तेज से, हम जैसे ब्राह्मणों के संग में रहता है सेवा करता है, हमारे तेज से उठा रखा है इसे, आशीर्वाद लो हमसे बुंदी, तुम्हारा लड़का सुखी रहेगा, लो आशीर्वाद प्रणाम करो। यशोदा माई कह रही तू बाटू, सबसे पहले तो मैं तेरे को श्राप दूंगी, तूने तेरी वजह से मेरा लड़का सबसे ज्यादा परेशान रहता है। बोले तुम मेरे को श्राप दोगी, ऐसा ब्रह्म श्राप दूंगा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। नंद महाराज कह रहे भैया देखो इससे पंगा मत लो, तुम अपने लड़के के साथ है। यशोदा मैया उनके हाथ में मसाज कर रही है और कृष्ण बोल रहे मैया मैंने नहीं उठाया। बोले ये गोवर्धन अपने आप उठ गए। बोले जब, तो यशोदा माई बोली जो ये अपने आप उठ गए हैं तो हाथ नीचे कर लेना, तब ये भी काम नहीं करेंगे ना कृष्ण। अब यहां पे यशोदा माई को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सामने कई सारे गोप सखा ग्वाल सब कोई नाच रहा है गा रहा है, अचानक सबने अपने म्यूजिक शुरू कर दिए, आनंद नर्तन गायन, और फिर बीच बीच में कुछ लोग ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अच्छे जैसे मैजिशियंस होते हैं ना सोसाइटी में, मैजिशियंस समझते हैं ना, वो जादू करके दिखा रहे हैं, कृष्ण उसका आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद में चल रहा है जीवन वहां पे, नाच गाना, 7 दिन 7 रात कोई सोया ही नहीं, ना किसी ने खाया जबकि सारी फैसिलिटी थी, क्योंकि सब लोगों को क्या लगता था, कोई सोचा था कि भाई कृष्ण चाहते तो उठा के क्या दिखाने के लिए भी खड़े हो गए, देखो मैंने उठाया। अगर वो नहीं चाहते कि कोई देखे कि मैं भगवान हूं, कृष्ण वृंदावन में नहीं चाहते मैं भगवान कोई जाने, तो फिर गोवर्धन क्यों उठाया, हवा में उठे रहने देते, कृष्ण चाहे तो क्या गोवर्धन हवा में नहीं रह सकता? जब पृथ्वी और इतने सारे ब्रह्मांड के जो इतने सारे वो हैं ग्रह हैं हवा में टिके रह सकते हैं, तो गोवर्धन क्यों नहीं टिक सकते थे? पर कृष्ण ने क्यों उठाया रखा? क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कृष्ण के पास कि सारे ब्रजवासी उनके पास रहेंगे, क्योंकि उठा के रखेंगे तो कोई कहीं घर जाएगा नहीं, सब वही बैठेंगे। तो कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, अपने भक्तों का साथ चाहिए। एक बार किसी भक्त ने पेंटिंग बनाई थी श्रीला प्रभुपाद जी टाइम पे, कृष्ण की पेंटिंग, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई उसने। प्रभुपाद जी बोले दिस इज नॉट कृष्ण। बोले प्रभुपाद ही ब्लूइश, जो जो क्वालिटी कृष्ण में हम देखते हैं, मतलब एक पिक्चर बनाने के लिए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं, फ्लूट है, मोर पंख है, एवरीथिंग इज देयर। प्रभुपाद बोले बट स्टिल ही इज नॉट कृष्ण। बट प्रभुपाद कैन बी एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेक कृष्ण? प्रभुपाद सेड बिकॉज कृष्ण इज नेवर अलोन एंड इन दिस पेंटिंग देयर इज नो डिवोटी विद कृष्ण। कृष्ण अपने भक्तों के बिना कहीं नहीं रहते हैं, वो नहीं कहते मुझे अकेला छोड़ दो परेशान हूं मैं, नहीं, वो हमेशा अपने भक्तों के बीच में, केवल भक्तों के बीच में रहने से वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो केवल अपने भक्तों का संग मिलेगा इसलिए खड़े रहे थे 7 दिन 7 रात। अब इस बीच में वो सारे रसों का स्वादन कर रहे हैं, है ना, अपने सखाओं के साथ भी मजाक भी कर रहे हैं, चुटकुले भी छोड़ रहे हैं, यशोदा माई के वात्सल्य रस का भी आस्वादन कर रहे हैं। और फिर अचानक बीच में क्या हुआ, कृष्ण के पसीने छूट गए, पसीने छूट गए, सब बोले धे भैया लल्ला हमारा ये तो थक गया। और पसीने छूटते छूटते अचानक क्या हुआ, हिल गए कृष्ण, हिले तो पूरा गोवर्धन हिल गया, सब डर गए भैया ये हिल मत तू। तो सब सोच रहे कि भैया डंडा वंडा लगा रहे क्या करें, सब चिंता में पड़ गए। बलराम जी बोले रहने तो मुझे मालूम है क्या हुआ है, मुझे मालूम है क्या हुआ है, ये अभी फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। और वहां से ललिता देवी बोलती है राधा रानी को कि राधा तुम पीछे की तरफ चलो, तुम यहां सामने मत खड़ी हो, समझ गए। तो उसने राधा रानी को देख लिया, शरीर से पफ पसीने छूट गए। श्रीमती राधा रानी के बारे में लिखा है आचार्य ने, यम ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुख्य लालक्षितो न सरसा पुरुषस्य तस्या। वो पुरुष जिनको ब्रह्मा रुद्र शुक्र नारद इत्यादि इत्यादि जो है उनको अप्रोच करने में भी भय करते हैं कि इनके पास कैसे आ सकते हैं, तो मतलब है ना सहस्र शीर्षा पुरुषा, मतलब इतने पावरफुल भगवान है। ऊपर वो कहते हैं सद्यो वशीकृत चूर्णम अनंत शक्ति तमराधिका चरण रेणु अनुस्मरण। ऐसे शक्तिशाली भगवान के जो अंदर थोड़ी सी ईगो आ जाए उसको सबको चूर चूर कर देती है। वास्तव में क्या कहते हैं, ऐसे शक्तिशाली भगवान को निरंतर वशीकृता उनको आकर्षित करके अपने पास रखती है, और आकर्षित करके क्या करती है, हमेशा उनको अपने आसपास बुलाती है। तो आचार्य बोलते तमराधिका चरण रेणु अनुस्मरण, ऐसी श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु का जो है बार बार स्मरण करते हैं। तो कृष्ण सारे रसों का वहां आस्वादन कर रहे हैं, आनंद हो रहा है, लगाड़े बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रही है, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स गाई जा रही है। और वो जो सॉन्ग है वो सॉन्ग बहुत सुंदर सॉन्ग्स है, श्रीजीव गोस्वामी ने वो सारी सॉन्ग्स मेंशन करी है जो समय उन्होंने गोवर्धन के नीचे गाई। इंद्र ने सोचा कि अब तो निपट गया होगा, 2-4 अपने जासूस भेजे जाओ देख क्या हो गया काम। वो देख के आए बोले कि अरे भैया पूरा ब्रज डूब गया, पानी पानी हो गया और कुछ नहीं है, वहां पे एक गोवर्धन नजर आ रहा है बाकी सब डूब गया। इंद्र बोले आया मजा। फिर एक और को बोला तुम भी चेक करके आओ, ईगो पड़ी ईगो चढ़ी है ना सिर पे एकदम, ना चेक करके आओ। दूसरा आदमी गया, अब की बार उन्होंने फिर से विद्युत देवता को भेजा। विद्युत देवता ने देखो सब कुछ तो डूब गया पर ये पर्वत हवा में नजर आ रहा है। तो वो जाके बोले इंद्रदेव को, इंद्रदेव सब कुछ तो ठीक है पर ये पर्वत फिर से उड़ना शुरू हो गए, मतलब हवा में नजर आ रहा है और उस पर्वत के नीचे आपका पूरा ब्रज तो डूब गया पर ब्रज के जितने लोग हैं उस पर्वत के नीचे हैं और वहां पे तो मजे ले रहे, आप वहां पे गुस्से में बैठे हो पर वहां पे नाच रहे हैं गा रहे हैं आनंद चल रहा है वहां पे। इंद्रदेव ने कहा वो कहावत है ना आपने सुनी होगी, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, सुनिए पंजाबी लोग बोलते हैं कहावत। मेरी माँ जब मैं कुछ काम ठीक से नहीं करता था तो मेरी माँ वो काम खुद करती थी, और करते हुए बोलती थी आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, पहले खुद मर फिर स्वर्ग जाओगे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है मरो क्या कर सकते। तब इंद्र देवता खुद आ गए, आके उन्होंने अपने वज्र से धा अटैक करना शुरू किए। और जाके देखा तो गोवर्धन के ऊपर का एक पत्ता टूट के नहीं गिरा, नीचे तो क्या होगा। तो जब ये अपने बहुत अटैक कर करके ना पूरे थक चुके थे, अचानक वहां पर एक जो है यक्ष आता है, यक्ष का नाम भूल गए। तो यक्ष बोलता है प्रणाम करता आते ही, इंद्र महाराज इंद्र की जय हो, महाराज इंद्र मैं आपके लिए एक पत्र लेके आया। बोले क्या पत्र है किसने भेजा। बोला हमारे दानवादिराज द्रुमिल के पुत्र हम सबके राजा के द्वारा भेजा हुआ पत्र है। और द्रुमिल दानव के पुत्र पता है कौन है कंस महाराज। कंस महाराज उग्रसेन के पुत्र नहीं है। उग्रसेन की वाइफ में दानव राज द्रुमिल ने संतान स्थापित करी थी, वो थे कंस। तो बोला उन्होंने लेटर भेजा आपके लिए। तो वो जो लेटर भेजा बोले ठीक है पढ़ो। लेटर पढ़ा बोले अब कंस इंद्र को बोल रहे हैं महाराज इंद्र आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कर, हमारा चित्त बड़ा आनंदमय है, हम बड़े आनंदित हैं, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है। जब कोई व्यक्ति अच्छी पदवी पर विराजमान हो, अच्छी स्थान पर विराजमान हो और कोई अगर उनका सम्मान ना करे तो उनके साथ ऐसा ही हाल होना चाहिए, डुबो दो पूरी नगरी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं महाराज इंद्र, आपकी अगर कहीं आपको कहीं पे भी हमारी सहायता चाहिए हो तो निरंतर हम आपकी सहायता के लिए हाजिर हैं, क्योंकि हम तो आपके दास हैं। और आपके जहां तक यज्ञ की बात है, ब्रजवासियों ने आपका यज्ञ नहीं किया उसका आप दुख मत मनाइए, उनको तो आप डुबो दीजिए, मथुरा में हम आपके लिए यज्ञ करेंगे, अलग से वहां पे आइए आपका पूरा यज्ञ किया जाएगा, आपकी सेवा की जाएगी, आपकी खातिरदारी की जाएगी। महाराज इंद्र की जय हो, कंस का प्रणाम स्वीकार कर। इंद्र तो बड़ी चिंता में आ गए, बोले ये कंस मुझे क्यों लेटर लिख रहा है, कंस हमेशा मुझसे फाइट करता था और वो मेरा सम्मान कर रहा था, बेटा बनाया सिर्फ कि भैया जिसके ऊपर मैं अटैक कर रहा हूं वो तो कंस मुझे बचाने के लिए आएगा, तो कंस को मारने के लिए आया व्यक्ति है, उनके ऊपर अटैक कर रहा हूं मैं। तो अब उनका दिमाग ठंडा हो गया, उन्होंने सारा एकदम सबको बोला रुक जाओ, अब क्या है कि ईगो अभी भी खाली नहीं हुई। तो ये बात तो समझ में आ गई गलती कर रहे हैं, फटाफट जाने लगे, बोले विद्यु संवर्तक सब वापस चलो, ये जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हम अटैक कर रहे थे वास्तव में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, विष्णु है, ये हमारे आराध्य देव है। और मैं टेस्टिंग के लिए आया था कि वो असली में भगवान है कि नहीं है, अब मैं 7 दिन हो गए, टेस्टिंग सफल हो गई है, ये असली में भगवान है, अब हम सब वापस चले गए। तो परेशानी तो आना शुरू हो गई भगवान से बंगा लिया। तो इधर से जब सब वापस गए, बारिश वारिश रुक गई, तो कृष्ण ने बोला कि अब सब ठीक हो गया है, हम सब अपने अपने घर की तरफ चलेंगे। बाहर गए तो क्या हुआ, सब सूखा हुआ नॉर्मल एकदम जैसा पहले था वैसा ही, भगवान की व्यवस्था, और सारे घर वैसे ही, सब अपने अपने घरों को चले गए। यहां पे इंद्र के पास बृहस्पति जी अन्य कोई ऋषि आए, उन्होंने बोला महाराज आपको मालूम है क्या हो रहा है, पहले हर यज्ञ में ऋषि मुनि आपका नाम लिया करते थे, आपका यज्ञ गान किया करते थे, परंतु अब पता क्या हो रहा है आपको, आपका नाम लेने से भी ऐसे थू थू कर रहे हैं आपके ऊपर, गल्ला ना थू। तो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं, आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, कैसे कृत्य आपने किया है। इंद्र बोला क्या करूं मैं बहुत दुखी हूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। तो बोले इंद्र को कि ठीक है ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो सॉल्यूशन बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको सारी कहानी बताई। ब्रह्मा जी बोले मुझे क्या बोले, मैं भी यही काम करके आया था थोड़े टाइम पहले, मैंने भी वही जाके पंखा लिया था। वृंदावन में जाओ तो सोच समझ के जाओ, वृंदावन में जाओ तो सोच समझ के जाओ, वहां पे कोई साधारण व्यक्ति से भी पंखा मत लो। चलो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, कृष्ण को बड़ी प्रिय है गायें, तो क्या नाम है सुरभि माता के, सुरभि जो है सारी जो गैया हैं उनके ओरिजिन है, तो सुरभि के प्लेनेट पे जाओ, वो सुरभि आपकी हेल्प करेगी। सुरभि के प्लेनेट पे गए, सुरभि के प्लैनेट पे गए तो सुरभि माता को बोला कि माता, सुरभि पता है ना तुम्हें, गाय है वो, सुरभि गाय, पर वो देवी है। उनको बोला कि आप मेरे साथ चलो और मेरे को ऐसे ऐसे मेरी सहायता करो। सुरभि बोली कुकर्म तुम करो, साथ में मैं जाऊं। तो ये प्रार्थना करने लगे तो सुरभि माता ने सोचा, देखो मेरे पूरा वंश जो है ब्रज में वो कृष्ण की लीलाओं में भाग ले रहा है, अब मैं भाग नहीं ले, तो हो सकता है कि इंद्र के माध्यम से, भक्त लोग कुछ भी होता तो कृपा ही समझते हैं ना सामने वाले की। बोले देखो इंद्र की कृपा से मेरे को भी जो है भगवान की लीला में कुछ तो भाग मिल जाएगा। तो वो तैयार हो गई। तो अब जब ये नीचे पहुंचे तो सारे ग्वाल बाल इत्यादि खेल रहे थे, तो ये झाड़ियों वाड़ियों में जाके छुप गए गैया के साथ, वो सुरभि माता के साथ। तो कृष्ण जानते थे जो आए हैं, तो कृष्ण अपने आप को धीरे धीरे सारे ग्वालों से अलग करके दूसरे रास्ते पे चले गए कि इंद्र भी बेचारा आया तो अपना काम निपटा गया। अब जब अलग हो गए तो सुरभि माता को बोले आप आगे आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। सुरभि बोली कि आपको बताती हूँ, जब कोई व्यक्ति गलती करता है और क्षमा याचने के लिए जाता है और किसी दूसरे मीडिएटर को सामने रखता है तो इसका मतलब वो केवल उस व्यक्ति के क्रोध से बचना चाहता है, परंतु वास्तव में हृदय से अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। तुम आगे जाओ, मैं पीछे आऊंगा, सीधे जाके माफी मांगो। फिर वो आगे आगे चले, सुरभि माता उनके पीछे गई गई। तो अब ये इंद्रदेव जो है ना उनसे भगवान से प्रार्थना करने लगे। ओम, जैसे ओम बोलने लगे तो पहले तो सब दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वो बोलने लगे नमो, कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। तो फिर वो चुप हो गए इंद्रदेव, क्योंकि जब हमसे बड़ा कोई बोलने लग जाए तो हमें चुप हो जाना चाहिए, तो वो चुप हो गए, कृष्ण भी चुप हो गए। फिर कुछ टाइम बाद फिर से इंद्र बोलने लगे नमो, कृष्ण फिर बोलने लगे, फिर चुप। कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हम किसी से बात कर रहे थे बोलो खत्म हो जाता है, ऐसे होता है ना ऐसा कई बार। तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट होने लगी है और ये जानबूझ के कर रहे थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण उनको भी एम्बेरस करना चाहते हैं और भी। तो और पर फिर कुछ टाइम के बाद कृष्ण ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने कृष्ण का स्तुतियां करी, स्तुति करी। कृष्ण बोला कि गलती करी है दोबारा मत करना, इस बार क्षमा कर देता हूँ, तुम सुरभि को साथ लेके आए। और जब कृष्ण ने क्षमा किया और बताया कि देखो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इंद्र बोले कि प्रभु मेरी गलती है, वास्तव में हम सब जानते हैं कि एक भी चीज पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पेट हमारा खराब हो जाता है, कई सारी चीजों पर नियंत्रण नहीं होता हमारा। परंतु क्या है कि जब आप ही के द्वारा हमारे को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, वही शक्तियां हमारे मन को ऐसा विचलित कर देती हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे वास्तव में आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा ऐसी गलती ना करूँ। तो कृष्ण प्रसन्न हुए, तब तक सारे देवी देवता सब आ गए वहां पर, आ गए तो सबने फाइनल किया कि अब हम इनका अभिषेक करेंगे और आरती करेंगे। तो उनका जो अभिषेक किया गया वो स्थान है सुरभि कुंज पे, ही दोनों मिले थे आपस में, सुरभि मैया और इंद्र कृष्ण से। और गोविंद कुंड का स्थान है जहां पे अभिषेक हुआ, वो जो गोविंद कुंड है वो भगवान का अभिषेक का ही जगह, गोविंद कुंड का अभिषेक हुआ। और अभिषेक करने के बाद आरती इत्यादि भी की गई। जब आरती कर रहे थे सारे देवी देवता चामर दुला रहे थे और सारे तरह के पैफरेनिलिया जो भी है, आरती लैंप अगरबत्ती जो होती थी वो आज कल जैसी नहीं, अच्छी वाली अगरबत्ती, सब कुछ ऑफर किया भगवान को, भोग अर्पण किया। और ना भगवान बोले तो ठीक है जाओ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं क्या ये आरती वारती हो रही है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब अब देखो कि कितने कारणों से उनका नाम पड़ा, हम आगे बताएंगे। अब यहां पर उनको नाम दिया गोविंद किसने, सुरभि मैया ने, गो का मतलब गाय। बोले कि सबके इंद्र तो ये हो सकते हैं पर गायों के इंद्र कृष्ण, इसलिए गाय माता ने उनको नाम दिया गोविंद। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यहां पर उनका नाम पड़ेगा गोविंद, याद रखना श्री गोविंद देव जी की। अब ये जब देवता जाने लगे, कृष्ण बोला अब जल्दी निकलो, तो इन्होंने वहीं पे चामर वगैरह सब वहीं रख दिए, पैराफिनिलिया वहीं रख दिया। आगे चले तो पीछे से सखा वगैरह आ रहे थे और कृष्ण इसलिए एम्बैरस फील कर रहे थे कि ये जल्दी जाए। देखो यहाँ पे जो आध्यात्मिक भगवान की अद्भुत लीलाओं का सर्वोच्च स्थान है, उस स्थान पर कृष्ण अपने आप को भगवान कहे जाने में एम्बेरेस फील करते हैं। वहां पर वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहते, वो लोग भी नहीं मानते। ना तो भौतिक संसार के लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, ना आध्यात्मिक संसार के लोग भगवान को कृष्ण मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं। अगर कृष्ण को कोई भगवान मानता है तो केवल और केवल इस्कॉन वाले मानते हैं। समझते हैं इस बात को? क्योंकि जब भगवान के धाम में जाते हैं तो वहां पर इतना प्रेम होता है जो कोई भगवान सोचता ही नहीं उनको। और मेटेरियल वर्ल्ड के लोग इतने पतित हैं कि उनको क्या बताएं भगवान को। अब यहाँ पे ये सखा वगैरह आ गए, उन्होंने दूर से देख लिया था, कुछ आरती वारती हो रही थी, सब देख लिया था उन्होंने। आगे बोले बेटा ये कौन सी गेम खेल रहा था? अब उनको इससे कोई मतलब ही नहीं, उनके अंदर कोई ऐश्वर्य भाव ही नहीं थी। वो आगे बोले बेटा बुरा कौन सी गेम खेल रहा था? कृष्ण बोला नहीं कुछ नहीं वैसे ही। तो बोले बता बता। तो वो चामर वहां पे लटका हुआ था, उठा के लाया बच्चे, जैसे वो आरती कर रहे थे ये लोग भी ऐसे करने लगे, ऐसे कर रहे थे ना वो। तो अब वो तो बेचारे चामर ऐसे दुला रहे थे, तो ये दो चामर उठा लिए, दोनों तरफ लड़के खड़े हो गए और कृष्ण के मुंह पे चामर मारना शुरू कर दिए। मतलब मजा आ रहा है, ऐसे कर रहे थे तेरे साथ होते हैं, बता बेटा ऐसे कर रहे थे। और सब कुछ मजाक में उसके उनके साथ खेलने लग गए। और तो उन्होंने जो है सेलेस्टियल परफ्यूम लगाए थे, जो है ना स्वर्ग लोक के दिव्य इत्र भगवान के शरीर पे लगाए थे, तो वो उस इत्र की इतनी स्मेल थी। एक जाके कहता सुमन कहां से बेटा, और कहां गया था बताइए? मधुबन का बोलता है पक्का मुझे मालूम है कहां गया था, कहां से लाया पता। सब मजाक कर रहे हैं उनके साथ और वो जो पैर फ्रेन ले लिया उसके साथ खेल रहे हैं, और ये देवी देवताओं ने ऊपर से देखा नीचे। तो तब इन्होंने रियलाइज किया कि हमने भगवान का अभिषेक किया, हमने भगवान की आरती करी, वो उतना सौभाग्य की बात नहीं है। हमारे सौभाग्य की असली बात यह है, हमारा असली काम हमने ये किया है कि जो भगवान से असली में प्रेम करते हैं, कृष्ण से जो असली में प्रेम करते हैं, उन लोगों के खेलने की चीजें हम वहां छोड़ के आ गए। ये असली है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ परेशान हो रहे थे और उनके साथ आनंद ले रहे, और कृष्ण भी जोर जोर से, क्योंकि वो सब चामर चुमर मार रहे हैं, जोर जोर से हंसने लग गए, सब नाचने लग गए, सब आनंद होने लग गया। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ब्रजवासियों के इंद्रियों को आनंद देते हैं, है ना, ब्रज जन रंजन, अपने भक्तों के इंद्रियों को आनंद देते हैं। और अब इन गो का एक अर्थ होता है इंद्रियों, इंद्रियों को संस्कृत में गो भी कहा जाता है, इसलिए गोस्वामी का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करे। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसमें उसको बोला जाता है गोस्वामी, परंतु उसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, तो उसमें गो जो लगेगा वो इंद्रियों वाला नहीं लगेगा, उसका बनेगा गोबर स्वामी, और गोस्वामी होगा वो व्यक्ति जो इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा। और कृष्ण अपने ब्रजवासियों की इंद्रियों को आनंद देते हैं, इसलिए कृष्ण क्या हो गए? गोविंद। क्या हो गए? गोविंद, ब्रज जन रंजन। और फिर कृष्ण अपने सभी भक्तों की इंद्रियों को आनंद देते हैं। एक स्तुति में लिखते हैं भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंदन नंदनम। स्वभक्त चित्त रंजनम, अपने भक्तों के चित्त का रंजन आनंद देते हैं। और जब किसी के चित्त में आनंद होता है उनके नाम के द्वारा, तो सर्वेंद्रिया नाम कृतिम, जब भगवान अपने नाम के रूप में किसी भक्त के हृदय में घुस जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सर्वेंद्रिया नाम कृतिम, सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो अपने भक्तों को आनंद देते हैं। क्या हो गया इनका नाम? क्या नाम हो गया? भक्तों की इंद्रियों को आनंद देते हैं, क्या नाम हो गया? जोर से बोलो, हाँ, गोविंद। तो ये गोविंद देवी जी, अगर हम इनकी शरण में जाएंगे, और इनका एक नाम गोविंद इसलिए भी है कि जब बोलते हैं भगवान, भक्त लोग चिल्लाते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों की इच्छा क्या होती है कि हे कृष्ण आज आपकी इंद्रियों को हम देंगे आनंद, भक्त क्या चाहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं, कृष्ण भक्त की इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम क्या हो गया, गोविंदा। और ये कृष्ण सबसे ज्यादा भक्तों को आनंद देते हैं तब जब ये अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ खड़े होते हैं। दिव्यावृंदारण्य कल्प द्रुम रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्रीम गोविंद देव प्रेष्ठलाभ सेव्य मानस मरा। जब ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ खड़े होते हैं ऐसे दिव्या वृंदावन में, ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे, तब भक्त इनका दर्शन पाकर के सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और ये कहलाते हैं श्री श्री राधा गोविंद, राधा गोविंद देव की। तो श्री कृष्ण की अगर हम प्रेम से उनकी सेवा में लग जाएं, अब हमारे पास कुछ भी परिस्थितियां भगवान ने दिए हैं, कुछ भी ओहदा दिया है, कुछ भी यश दिया है, कुछ भी हमारे फॉलो करने वाले दिए हैं, और हर परिस्थिति में सावधान रहें कि हम क्या हैं, दास हैं, क्या हैं, और जो भी हम कर रहे हैं सेवा की भावना से कर रहे हैं, जो भी हमारा है वो सब वास्तव में हमारा नहीं है, किसका है, कृष्ण का है, बस हमारे को तो कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दिया गया है। केवल गाय नहीं, तेरा तुझको अर्पण जाला दे मेरा, मेरे पास 12,000 रुपए का फोन आपके लिए 11 रुपए की अरदास, ऐसे करते ना। पर जब हम वास्तव में इस भावना को रखेंगे कि भाई जैसे कृष्ण यूज करना चाहे, जैसा हमारे को रखे, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जैसे रखे श्री कृष्ण वैसे खुश रहेंगे हम, हमारी कुछ और इच्छा नहीं है, जिसमें आप सेटिस्फाई हो वही हम करेंगे, है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जब ये भावना आ जाएगी तो फिर उनको अलग से आगे कोई प्रयास नहीं करने पड़ेंगे हमारे लिए, जैसे इंद्र के लिए उनको इतने आडंबर रचने पड़े वो नहीं करने पड़ेंगे, और वो केवल जल्दी से हम उनके ऐसे भक्तों के संग में जाएंगे जहां पे कृष्ण खुश रहते हैं। कृष्ण किन भक्तों के संग में खुश रहते हैं, किन भक्तों के संग में कृष्ण खुश रहते हैं, अभी हमने वर्णन किया था, जो उनको भगवान नहीं मानते पर वो भक्त होते हैं, और साधारण संसार के भक्त नहीं, क्योंकि अगर हम कहें प्रभु जी मैं भी नहीं मानता भगवान को भक्त, ऐसे 76 बढ़ेंगे ना, एकदम ठीक हो जाएगा आदमी। तो वो भक्त जो भगवान को भगवान नहीं मानते वो रहते हैं कहां, श्री वृंदावन धाम में। तो जब हम वृंदावन धाम के वासी भक्तों के पास होंगे, उनके संग में होंगे, तब कृष्ण हमसे भी क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हीं के बीच में प्रसन्न रहते हैं। और उनके पास जाने का सबसे सरल उपाय है कि हम हर परिस्थिति में स्वीकार करें कि कृष्ण के द्वारा रची स्थिति है, जैसे रखेंगे मेरे को अपने नजदीक लाने के लिए मेरे साथ जो करना चाहे करें, आई एम रेडी फॉर दैट। आश्रीष्य वा पादताम विनिष्ट माम दर्शनाम मरमाताम करोति वा यथा तथा वा विदधातु नम पटो मत प्राणनाथस्तु सयमनापुरम। अरे जो करना करो मेरे साथ, आप ही मेरे स्वामी हो बस, और इसीलिए क्योंकि आप मेरे स्वामी हो, मेरी जिव्या पे कुछ रहेगा तो क्या रहेगा, आपका नाम। मेरा जीवन शुरू होगा तो किससे शुरू होगा, आपके नाम से, और जीवन खत्म होगा तो किससे खत्म होगा, तेरे नाम से शुरू, हरि नाम से शुरू, हरि नाम पे खत्म। शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, जय गोर प्रेमानंद। अन्नकूट महाप्रसाद की, सॉरी प्रभु जी भूखा रख दिया।